शाम को कुछ और मिलेगा, वो भी सेवा करेंगे लेक्चर में, प्रधानमंत्री महाराज को तुम्हें कुछ चाहिए होता है, ये लाइट ऑफ कीजिए, ये वो सब भी करेंगे, तो सब कुछ करेंगे। इसलिए बहुत बिजी स्केड्यूल में से समय निकाल के हमारे लिए आए हैं, तो हम उनको शुक्रिया धन्यवाद अर्पण करेंगे। एक बार रिपोर्ट
विशेष में इन चार धामों में कलयुग में जगन्नाथपुरी की विशेषता है। तो हम देखते कि भगवान जगन्नाथ जो है उनके विशाल नेत्र है, तो विशाल नेत्र का क्या हमें फायदा होता है? हम देखते कि भगवान जगन्नाथ जी के नेत्र बहुत विशाल है और उनके आंखों के ऊपर जो है वो आईलिड्स नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि थोड़ा समय जिस समय अपना आईलिड्स जो है नीचे आता है उतने क्षण तक हम कुछ चीज देख नहीं सकते। और हम देखते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में बहुत भीड़ रहती है, मान लो कि आप उनके सामने आ गए और उसी समय अगर
और थोड़ा ऊंचा चाहिए
भगवान के आंख बंद हो गए तो उससे क्या होगा कि आप भगवान के कृपा कटाक्ष से वंचित हो सकते हैं। मगर भगवान कैसे इतने दयालु है कि उनके आंख के ऊपर उपलब्ध रहते हैं। और उसमें बताया गया है कि ये धाम की महिमा का वर्णन किया गया है कि इतना भगवान की कृपा प्राप्त करना इतना आसान है कि केवल अगर कोई इच्छा करता है कि मैं भगवान के धाम जगन्नाथपुर में जाना चाहता हूं, बस केवल ये संकल्प मात्र से उसके समस्त पाप जो है वो नष्ट हो जाते। हम देख सकते हैं अगर हम भक्तों के संग में आकर अगर प्रेम पूर्वक कुछ साधना करेंगे तो हमें कितना उसका फायदा हो सकता है। तो इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि ये जो नील क्षेत्र है जगन्नाथपुरी है उसकी जो भूमि है वो चिंतामणि रत्नों से बनी हुई है, जो भी वन में वृक्ष दिखाई देते हैं सारे वृक्ष जो है वो कल्प वृक्ष है, और जब ही देवतागण ऊपर से इस जगन्नाथपुर क्षेत्र का दर्शन करते हैं तो उस समय सारे पुरी निवासी लोग उनको चतुर्भुज रूप में दिखाई देते हैं। हालांकि हमारे पास उस प्रकार का दिव्य दृष्टि नहीं है, मगर ये धाम की ये महिमा है कि न तो लोग उनको चतुर्भुज दिखते हैं, उससे ज्यादा है कि FM जो है 97 इसमें उपलब्ध है, हिंदी और इंग्लिश क्या है सो हिंदी में जो FM पे सुनना चाहते हैं वो 97 पे देख सकते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि अनेक जो ग्रंथ है बृहद भागवतामृत है उसमें भी वर्णन किया है कि ये धाम व धाम के जो पशुजन है ये पशुजन भी चतुर्भुज रूप में देवताओं को दिखाई देते हैं। तो ऐसे एक बार ऐसा होता है कि जब ब्रह्मा जी ये सारे सृष्टि की निर्मिति करते हैं और निर्मिति करने के बाद जब वो देखते हैं कि इस संसार में जो जीव है उनको समस्त दुखों का सामना करना पड़ता है। ब्रह्मा जी जो है आदि गुरु है तो वो समझ जाते हैं कि जीव को इस भौतिक संसार में अनेक कष्ट करना पड़ता है, अनेक दुख भोगने पड़ते हैं, तो कैसे इनका उद्धार हो सके? तो इसलिए वो तपस्या करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कैसे ये जीवों का उद्धार हो सकता है, ये भौतिक संसार में इतना दुख भरा है और उसी माया में व्यक्ति जो है मग्न रहता है और बार बार इसी व्यक्तिक संसार में जन्म लेते रहता है, तो कैसे इसका उद्धार हो सकता है? तो प्रार्थना करने के बाद साक्षात भगवान विष्णु वहां पर प्रकट होते हैं और वो जगन्नाथ जी के बारे में बताते हैं कि इस युग में मैं जो है इस युग में मैं जो लवण समुद्र है यानी सागर है, सागर के उत्तरी दिशा में और महानदी के दक्षिण दिशा में जो नीलाचल क्षेत्र है उस पे मैं अवतरित होऊंगा और ये जो धाम है वो मेरे दिव्य शक्ति से प्रकट होगा और ये जहां धाम है अक्षय है, जब भी ब्रह्मा का रात होता है उस समय हमेशा सृष्टि में प्लरय होता है, तो ऐसे प्लरय के समय भी ये धाम कभी नष्ट नहीं होता है। तो ये सब वरदान सुनकर ब्रह्मा जी बहुत खुश होते हैं कि जीव को अगर इस संसार में उद्धार करना है तो अगर केवल वो जगन्नाथ जी के धाम आने का संकल्प मात्र करता है, उस संकल्प मात्र से ही उसका उद्धार हो सकता है। फिर स्वयं भगवान स्वयं जो ब्रह्मा जी है जब इस श्री क्षेत्र में आ जाते हैं जगन्नाथपुरी में और जब रोहिणी कुंड के पास आते हैं और वो देखते हैं कि एक कौवा जो है वो उस कुंड के अंदर गिरता है और तुरंत उसको चतुर्भुज रूप प्राप्त होता है, तो ब्रह्मा जी का विश्वास बैठता है कि ये स्थान है सचमुच जो है जीव का उद्धार कर सकते हैं कि जो अत्यंत निम्न योनि का पशु है उसको भी इतनी गति प्राप्त हो सकती है। तो ये देखने के बाद यमराज जी वहां पर आ जाते हैं, तो यमराज जी कहते हैं कि मेरा तो ये कार्य है कि जो जीव ठीक तरह से कार्य नहीं करते उनको दंडित किया जाए, तो आपका धाम है उसमें केवल आने से ही लोगों को इतना फल प्राप्त होता है, तो ऐसा हो जाएगा तो मेरे लिए कोई भी कार्य नहीं बचेगा। तो उस समय लक्ष्मी जी वहां उनको बताते हैं कि ये जो पुरुषोत्तम क्षेत्र धाम है उस पे आपका कोई अधिकार नहीं चलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा अच्छा अधिकार नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग अलग अलग प्रकार का कार्य करेंगे, तो अधिकार किसका है, तो अधिकार साक्षात जगन्नाथ जी का है। मतलब जिस जो भी कार्य करेगा उस कार्य का निर्णय करने का अधिकार यमराज जी को नहीं होगा मगर जगन्नाथ जी को होगा। तो अगर हम लोग कुछ गलत कार्य करेंगे पाप कर्म करेंगे तो जगन्नाथ जरूर हमको सजा दे सकते, मगर क्या होता है कि भगवान ने एक थप्पड़ भी लगाई तो क्या होगा, वो हमारे फायदे के लिए होगा क्योंकि भगवान के श्री हस्त से अगर हमको कुछ स्पर्श भी होता है तो भी हमारे लिए फायदे का हो सकता है। तो ये एक विशेषता है इस धाम की। और उसमें हमने देखा कि जैसे भक्ति पुरुषोत्तम महाराज बता रहे थे कि जगन्नाथ जी यानी सारे विश्व के नाथ है, सभी प्रकार के धर्म के लोग इनकी पूजा कर सकते हैं, सभी अलग अलग देश के निवासी, तो कोई किसी भी देश का हो किसी भी धर्म का हो वो जगन्नाथ जी का पूजा कर सकता है। और जगन्नाथ जी जो ऐसे एकमात्र विग्रह है कि जो मूल विग्रह है वो मंदिर के बाहर आता है, नहीं तो शास्त्र के अनुसार एक बार जब विग्रह की प्रतिष्ठा होती है तो उस स्थान से वो हिल नहीं सकते। हाँ, अगर आप उनके लिए और एक विशाल मंदिर का निर्माण करते हैं तो ठीक है कि वो विशाल मंदिर में जा सकते हैं, नहीं तो उस स्थान से मूल विग्रह कभी भी हिलते नहीं। और यहां पर साक्षात भगवान जगन्नाथ जी जो है वो साल में एक बार स्वयं बाहर निकलते हैं, हालांकि उनका जो विग्रह है वो बहुत वजनदार होता है, हिलाना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी जगन्नाथ जी जो है बाहर आते हैं। और जैसे उन्होंने बताया कि ब्राह्मण भी इसके विग्रह की सेवा करते हैं, 11 महीने जो है सेवा का अधिकार ब्राह्मणों का होता है और 1 महीना जो है जो शबर जाति के लोग हैं वो भगवान की पूजा करते हैं। हालांकि भले ही वो शबर जाति के लोग को वर्णाश्रम से बाहर है, मगर आप उनकी दिनचर्या देखेंगे तो वो भी उसी प्रकार के सारे स्वच्छता के नियम को कड़ी तरह से पालन करते हैं। और विशेष करके ये जो शबर है इनकी ये विशेषता होती है कि वो जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी हमारे नाथ है, वो एक स्वयं उनका व्यक्तिगत रूप है, एक दिव्य रूप है और उसमें उनका प्रेम से आदान प्रदान होता है। इसलिए जब भगवान को ज्वर आ जाता है, बुखार चढ़ता है, तो दैतापति जो है जो शबर जाति के लोग है वो विशेष कर जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं। हालांकि जब व्यक्ति बीमार होता है तो उसके विशेष रिश्तेदार मित्रगण स्वयं आकर उनकी सेवा करते हैं, तो उसे जानते हैं कि ये शबर जाति के जो लोग है वो भी भगवान को इतने प्रिय है। हालांकि जो वेद शास्त्र है उस शास्त्र में जो नियम बताए उसका भी पालन करते हैं और साथ साथ जो गोस्वामी की परंपरा है कि जिसमें भक्ति और प्रेम से भगवान को जीता जा सकता है उसका भी उदाहरण यहाँ पर हम देखते हैं। और भगवान जगन्नाथ जी की जब पूजा होती है तो पूजा के भी अनेक विधि होती है और उसमें कड़े नियमों का पालन होता है। हालांकि हमको ऐसे समझना नहीं चाहिए कि हम कभी जाते हैं तो कभी मंदिर में दर्शन खुले रहते हैं, कभी मंदिर में दर्शन बंद रहते हैं। हालांकि नियम बहुत कम है, ऐसे नहीं, नियम जो है बहुत कड़क नियम हम देख सकते हैं। जैसे हम लोग तो हमारे मंदिर में भगवान के विग्रह को भोग अर्पण करते हैं, तो भगवान ने विग्रह वो भोग स्वीकार किया कि नहीं हम जानते नहीं, हमारा कैसा है कि ये मंत्र बोलने का रखने का 15 मिनट के बाद हम निकलना। तो यहाँ पे कैसे होता है कि जब वो भोग अर्पण करेगा उसके हाथ में जो जल है उसमें अगर जगन्नाथ जी की प्रतिमा दिखाई देती है उसका मतलब भगवान ने भोग स्वीकार किया, अगर प्रतिमा नहीं दिखती है तो सारा जो भोग है उसको जमीन के अंदर मट्टी में गाड़ना पड़ता है, फिर से इतना भोग बनाना पड़ता है और फिर से भगवान को अर्पण करना पड़ता है। उस समय अगर दिखाई गया प्रतिमा तो फिर भोग चढ़ेगा। तो इस प्रकार से कड़क नियम यहां पर होते हैं। अगर किसी अपवित्र वस्तु अगर मंदिर में आती है या कोई नीच योनि का प्राणी मंदिर के अंदर आता है तो सारा मंदिर है उसको भुलाया जाता है। तभी आपने देखा होगा कि यह मंदिर है, विशाल मंदिर है, हमें क्या होता है कि अभी हमारे पास टैप वाटर होता है तो हमको कोई धुल किसी भी जगह की धुलाई करने में इतनी कठिनाई नहीं होती, मगर ये जो परंपरा है वो कई सालों से चली है। तो उसका मतलब अगर ये विशाल मंदिर को धोना है तो आपको कुएं से पानी निकालना पड़ेगा, फिर उसको लेके जाना पड़ेगा और इतने विशाल क्षेत्र में धोकर साफ करना पड़ेगा, तो ये कोई आसान बात नहीं। तो ऐसे एक बार एक समय में ऐसे होता है कि भगवान जगन्नाथ जी के लिए हवा के लिए पंखा चलता है, तो एक व्यक्ति का सेवा होता है कि वो पंखे को हिलाया, उनके व्यक्ति बाहर रहता है और पंखा अंदर होता है और रस्सी से वो खींचते रहते हैं। तो एक ऐसा नियम है कि अगर ये पंखा भगवान के स्त्री अंग को स्पर्श करता है तो फिर से सारा मंदिर है उसको साफ करना पड़ेगा। तो एक दिन एक सेवक है, वो सेवा करते करते उसको नींद आता है, नींद आता है तो ये पंखा है भगवान के स्त्री अंग को स्पर्श करता है। तो प्रथा के अनुसार अभी सारा मंदिर की सफाई होगी, और मंदिर की सफाई किससे होगी, तो एक नदी है इस पास में, तो केवल उस नदी के जल से ही मंदिर की सफाई हो सकती है। मगर जब ये चीज हुई उस समय ग्रीष्म ऋतु था और नदी के अंदर पानी नहीं था, तभी नियम है कि इस नदी के पानी से ही मंदिर की धुलाई होगी, मगर नदी में तो जल है ही, तो अभी क्या कह रहे। तो भगवान की पूजा जो है वो रुक गई। और उस समय ऐसे था कि सारे पुरी के निवासी जो है वो अपने घर में कभी कुकिंग नहीं करते थे, रसोई नहीं बनाते थे, सारा जो है सारे लोग जो है वो मंदिर से सेवा से निगड़ित होते। जैसे हम देखते हैं कि श्रीरंगम है, जगन्नाथपुरी है, तो ऐसे विशाल मंदिरों में अभी हम देखते हैं कि हमारा चौबीसा मंदिर है मगर उसमें कितने लोगों की सेवा की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर इतना विशाल मंदिर है, इतना विशाल भोग लगता है और अलग अलग प्रकार के जो है, केवल माला का आप देखेंगे तो दिन में कई बार अलग अलग मालाएं भगवान को चढ़ती है। जैसे हमारे मंदिर में अगर भगवान की माला करना है तो क्या करते हैं हम लोग, पहले दिन माला बना के रखते हैं, फिर दूसरे दिन जो माला चढ़ाते हैं दिन भर वो माला भगवान के शरीर पे रहेगी। पर यहाँ पे ऐसे नहीं होता है कि अलग अलग माला है, दिन के अलग अलग समय पे बनाकर देना होता है। तो इस प्रकार से सारे पूरी वासी जो है जगन्नाथ जी के मंदिर में आकर अलग अलग प्रकार के सेवाएं जो करते रहते। तो अगर भगवान को भोग नहीं चढ़ा तो महाप्रसाद नहीं तो फिर करेंगे क्या। तो उन्होंने बताया कि अगर खाना है तो केवल विष्णु प्रसाद खाना है, भगवान का प्रसाद खाना है। तो उन्होंने क्या किया, अगर जगन्नाथ जी का प्रसाद नहीं है तो अनंत वासुदेव से हम प्रसाद ला सकते हैं, वो थोड़ा बहुत हम खा सकते हैं। तो फिर उन्होंने 18 बैलगाड़ी जो है वो अनंत वासुदेव को वहां भेजा और वहां से प्रसाद लाकर थोड़ा प्रसाद ग्रहण करना चालू किया। वह 3 दिन के बाद अचानक भगवान के इच्छा से, जगन्नाथ जी की इच्छा से बादल आ गए और अनसीजनल रेन जिसको बोलते हैं, ऐसा बहुत सारा वर्षा हो गई। उस वर्षा के कारण फिर नदी में थोड़ा बहुत जल इकट्ठा हुआ, फिर उस जल से मंदिर की सफाई हो गई और उसके बाद में फिर से सेवा जो है आरंभ हो गया। तो इस प्रकार से एक कड़क नियम भी है और साथ साथ भगवान इतने दयालु है कि सभी लोगों की सेवा को वो स्वीकार करते हैं। जैसे बताया गया कि जय भगवान जब भी रथ यात्रा में बाहर आते हैं तो उस समय कोई भी व्यक्ति आकर उनको स्पर्श कर सकता है, भगवान के चरण को पकड़ सकता है। और भगवान के जो, जैसे महाराज बता रहे थे कि कोई पंडा जो है भगवान के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखकर खड़ा भी रह सकता है। तो एक जगह बहुत कड़े नियम का पालन भी है और साथ साथ भक्त के भाव के अनुसार भगवान उस भक्त के प्रति उस प्रकार से व्यवहार भी करते हैं। तो आप देखेंगे कि यहां पर परंपरा के अनुसार हर एक परिवार की अलग अलग सेवा होती है। जैसे हमने देखा कि जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर जो ध्वज पताका जो लगाते हैं तो एक परिवार जो है उसकी वो सेवा होती है कि वहां ऊपर चढ़कर उस ध्वज को लगाया जाए और इसका प्रशिक्षण जो है, जब उस घर का लड़का 8 साल का हो जाता है तो 8 साल से उसका प्रशिक्षण मिलता है कि कैसे ऊपर जाने का, चढ़ने का और ध्वजा को रख देने का। और आज तक जो है एक भी व्यक्ति वहां से गिरा नहीं है। हालांकि हम देख सकते कि बहुत ऊंचाई है। 1960s में एक ऐसे हो गया कि जब ये 8 साल का बालक जो है ऊपर चढ़ गया, उस पर ध्वज लगा दिया और नीचे आते समय वो उसका पैर फिसल गया और ऊपर से नीचे गिरने लगा। नीचे गिर रहा था तो कैसे, तो सिर नीचे पैर ऊपर ऐसा, और पीछे के हिस्से में जहां पर वामन देव नरसिंह देव है उस स्थान पे गिर रहा था। और अभी लोग देख रहे थे कि अभी उसका सिर जो है बराबर अभी जो वामन देव का विग्रह का डोम है, शिखर है, उसको लगेगा। उसी समय अचानक वहां पर 3 बंदर आ गए। 3 बंदरों ने उसको पकड़ लिया, उठा करके बराबर जमीन पर रख दिया। तो ऐसा करके आज तक जो है कभी भी उस मतलब इतने ऊपर चढ़ के और भज रहे में एक व्यक्ति को भी किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक हानि नहीं पहुंची है। तो ऐसे भगवान है कि वो हमेशा जो है भक्तों को दर्शन देते रहते। इसलिए जो महाराज इंद्रदुम्ना है उनकी ये इच्छा थी कि मंदिर का मंदिर जो है केवल 3 घंटे के लिए बंद रहेगा, तो दिन भर जो है लोग आकर भगवान का कृपा कटाक्ष है उसका स्वीकार कर सकते हैं। तो भगवान का जो कृपालु है उसको सागर की हमेशा महिमा दी जाती है। तो सागर की महिमा इसलिए दी जाती है कि सागर का जल विशाल होता है, हमको तालाब नदी सूख गई ऐसे दिखता है मगर सागर कभी सूखा हुआ दिखता नहीं, क्योंकि तो अगर सागर सूख गया तो हमारा अस्तित्व भी नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमको समझने के लिए बताया गया है कि ऐसे ही भगवान की कृपा जो है इतनी विशाल है कि कभी वो समाप्त हो ही नहीं सकती। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे कि हालांकि लोगों हमको लगता है कि 3 घंटा के लिए मंदिर बंद हो गया, पर वैसे मंदिर बंद नहीं होता है क्योंकि इस 3 घंटे में देवतागण आकर भगवान को उनके कार्य का सारा रिपोर्ट देते हैं। तो एक बार जगन्नाथपुरी में श्वेत करके त्रेता युग में राजा था, तो वो राजा जो है एक दिन सुबह के समय बहुत जल्दी प्रातःकाल उठकर मंदिर में आया। तो उस समय देखा कि सारे देवतागण है वो जगन्नाथ जी की पूजा कर रहे और अनेक बहुत मूल्यवान चीज लाकर वो भगवान को अर्पण कर रहे। तो ये राजा है उसको बहुत संकोच होता है कि हम तो मानव है और हमारे पास जो भी कीमती चीजें हम भगवान को अर्पण करते हैं मगर देवतागण के पास तो इतनी बड़ी और सुंदर मौल्यवान चीज है वो भी वो भगवान को अर्पण करते हैं फिर भी भगवान संतुष्ट नहीं हो सकते, तो मेरे द्वारा अर्पण किए व्यंजन भगवान कैसे स्वीकार कर सकते हैं। और साथ साथ उसने दिव्य दृष्टि से देखा कि साक्षात लक्ष्मी देवी जो है वो जगन्नाथ जी को व्यंजन परोस रही है। तो जगन्नाथ जी बलदेव सुभद्रा वो बड़े संतोषपूर्वक उसका ग्रहण कर रहे हैं, मूल विग्रह है वो भी बैठकर संतोषपूर्ण लक्ष्मी जी के हाथ से षडरस पूर्ण जो व्यंजन है वो ग्रहण कर रहे हैं। फिर बहुत देर तक उसने ये सारा देख लिया और उसके बाद फिर भगवान उनसे प्रसन्न होकर उनको बताया कि आपको श्वेत माधव नाम से आप विख्यात होंगे। तो इस प्रकार से ये जगन्नाथ जी की विशेषता है कि भक्तों के लिए वो हमेशा के लिए उपलब्ध है। हालांकि भगवान बहुत महान है दिव्य है तो भगवान के प्रति हमारे मन के अंदर आदर और ऐश्वर्य की भावना जरूर होनी चाहिए मगर साथ साथ नैसर्गिक जो भाव है प्रेम का जो भाव है वो भाव भी हमेशा होना चाहिए। और इसलिए हम देखते हैं कि जो भी भगवत भक्तगण है या भगवान के जो पंडास है कि जो अभी भगवान से सेवा दे रहे हैं हम देख सकते हैं कि एक नैसर्गिक भाव से वो भगवान की सेवा करते हैं और भगवान इस भाव को हमेशा चाहते हैं। भगवान हमेशा ये नहीं चाहते कि उनके भक्त है हमेशा ऐश्वर्य भाव से डरे रहे, वो भक्तों से प्रेम चाहते हैं। और हम देखते हैं कि ये जो पंडास है तो किस भावना से करते हैं कि वो उनको लगता है कि ये हमारा परिवार का एक सदस्य है। तो भगवान जगन्नाथ जी उनको लगता है कि परिवार का सदस्य है प्रमुख व्यक्ति है और उनकी हम प्रेम पूर्वक सेवा कर रहे हैं। और ये जो भाव है कि जैसे चैतन्य महाप्रभु हम देखते हैं कि जगन्नाथपुरी में आकर उन्होंने निवास किया और चेतन महाप्रभु क्या करते तो हमेशा भक्त के भावना में रहते हैं, राधा रानी के भावना का रस का आस्वादन करते हैं। तो इसलिए जगन्नाथपुरी एक वृंदावन है और किस प्रकार से भक्त भगवान से प्रेम कर सकता है, या आज भगवान के सेवकों से हम देख सकते हैं, इसका विस्तृत वर्णन चैतन्य मंडल, चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत में है। अगर हम बार बार उसका पठन करेंगे तो हम सब समझ सकते हैं कि कैसे भक्तों को अपना जीवन जीना चाहिए। तो आज जो है हम एक इस स्थान को यमेश्वर टोटा करके स्थान बताया जाता है, या यमेश्वर यानी भगवान शिव जी का सुंदर मंदिर है। तो टोटा इस शब्द का अर्थ होता है उद्यान, और गोपीनाथ जो है कि इस स्थान पे रहते, इसलिए उद्यान में रहते, इसलिए उसका टोटा गोपीनाथ इस मंदिर का नाम हुआ था। जो चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेते हैं, और संन्यास के पश्चात जब पुरी में आते हैं तो उस समय गदाधर पंडित थे वो भी यहाँ पर आ जाते हैं। और ये टोटा गोपीनाथ मंदिर स्थान इसलिए प्रसिद्ध है कि वहां पर चैतन्य महाप्रभु आकर गदाधर पंडित से श्रीमद् भागवत का पाठ सुना करते थे। गदाधर पंडित है बहुत सुंदर प्रकार से श्रीमद् भागवत पढ़ाते थे। श्रीमद् भागवत के जो श्लोक है अलग अलग मीटर से बहुत मधुर स्वर में गाया करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु हमेशा वहां पर आकर गदाधर के मुख से भागवत सुनना चाहते थे, और हमेशा ध्रुव महाराज की कथा, प्रहलाद महाराज की कथा बार बार, सौ सौ बार जो है वो सुनते थे। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है कि शिल प्रभुपाद जी ने और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद ने ये जो मंदिर बनाए है, उस मंदिर का एक प्रमुख उद्देश्य ये था कि मंदिर के अंदर हमेशा हरि कथा होना चाहिए और हरि कीर्तन होना चाहिए, और जितना ज्यादा संख्या में ये करेंगे उससे वो प्रसन्न हो सकते हैं। तो इसमें यह देखा कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित बार बार मंदिर में आकर श्रीमद् भागवत का पाठ करते थे। प्रभुपाद ने मंदिर निर्माण करके हमें यही अवसर दिया है कि हम मंदिर में आकर हमेशा हरि कथा करें। जैसे श्री प्रभुपाद जी के एक शिष्य है जिनका गुंडीचा मंदिर के पास में मंदिर है, तो उसमें उनकी जो शिष्य उनकी आयु काफी लंबी थी, तो उस मंदिर में वो एक खाम के पास पर हमेशा बैठकर श्रीमद् भागवत पढ़ते थे। तो उनका जो श्रीमद् भागवत का ग्रंथ था, ग्रंथ के पीछे में हर साल इस दिन पे उन्होंने श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद का पहला श्लोक पढ़ना चालू किया, फिर साल में अंत में आता था कि 12वें स्कंद का अंतिम श्लोक ये पढ़ा। तो इस प्रकार से 50 साल जो है उनका रिकॉर्ड था कि हर साल उन्होंने एक बार तो श्रीमद् भागवत का पठन किया। तो भगवान भक्त की यही अभिलाषा है कि वो भगवान की जो कथा है वो सुनना चाहते हैं। तो एक दिन जो है यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु भगवान के भाव में उन्मत्त हो जाते हैं, तो उस समय अपने हाथ से रेत को हटाने लगते हैं। तो उनकी इतनी प्रबल विरह की भावना देखकर गोपीनाथ गदाधर पंडित वहां पर आकर उनको शांत करने का प्रयास करते हैं। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु उनको बताते हैं कि मेरे पास एक अमूल्य धन है, यह अमूल्य धन मैं आपको देना चाहता हूं, क्या आप उसका स्वीकार करेंगे? तो गदाधर पंडित बोलेंगे, गदाधर पंडित उत्तर देते हैं कि आपके पास अगर बहुत कीमती मौल्यवान वस्तु है, अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो उस वस्तु को मैं मेरे मस्तक के ऊपर रखकर उसको धारण करूंगा, बड़े प्रेम से मैं उसको स्वीकार करूंगा। तो उस समय वो रेत हटाकर गदाधर पंडित को बताते कि देखो यहां पर मेरे प्राणनाथ है, श्री कृष्ण के विग्रह का अग्रभाग दिखाई देते। तो जैसे गदाधर पंडित है वो वहां पर हाथ लगाते तो उनको देखता है कि श्री विग्रह का सिर का भाग वहां रेत में उनको दिखाई देता है। तो फिर रेत हटाकर श्री विग्रह को बाहर निकाला जाता है, तो बहुत सुंदर श्री विग्रह का दर्शन होता है। तो चैतन्य भागवत में वर्णन है कि गोपीनाथ जी का विग्रह इतना सुंदर है कि अगर पाषाण व्यक्ति है वो भी उनका दर्शन करता है तो उसका हृदय भी पिघल जाएगा। तो श्री विग्रह देखते ही चैतन्य महाप्रभु उनको गोपीनाथ करके संबोधित करते हैं, इसलिए उसका नाम जो है वो गोपीनाथ हो गए। तो यहाँ उस मंदिर में हम देखेंगे कि बाई तरफ से एक बलराम जी है, रेवती वरुण है, और मध्य भाग में है गोपीनाथ जी है, उनके बाजू में श्रीमती राधा रानी है, वो वीणा बजा रही है, और ललिता जी है वो बांसुरी बजा रहे हैं। और इस मंदिर की जो सेवा का अधिकार है वो गदाधर पंडित को लिया लिया था, और महाराज प्रताप रुद्र चाहते थे कि गदाधर पंडित को मैं कुछ भू संपत्ति दूं या कुछ संपत्ति दो कि जिससे वो मंदिर का खर्चा चला सकते, मगर गदाधर पंडित ने किसी भी प्रकार से राजा का भेंट वस्तु स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि केवल मैं माधुकरी कर इस मंदिर का जो भी खर्चा है वो चलाऊंगा। उसके बाद में आगे उसी इसमें कि जगन्नाथ चक्रवर्ती जिनको मामू ठाकुर कहा जाता था कि वो नीलांबर शशी माता के जो पिता है नीलांबर उनके भतीजे थे, वो गदाधर पंडित के बाद शिविर का सेवा करते थे। तो उन्होंने भी इस आदर्श का पालन करते हुए राजा से दिए किसी भी भेंट वस्तु का स्वीकार नहीं किया था, वो उसके बाद मर उस आदर्श को पीछे हटा गया और आगे के सवाई थे उन्होंने राजा की भेंट वस्तु स्वीकार की। तो इसमें एक विशेष लीला यहाँ पर हुई थी कि गदाधर पंडित जो है एक बार भागवत पठन कर रहे थे, तो उसी समय नित्यानंद प्रभु वहां उपस्थित हो जाते हैं। तो नित्यानंद प्रभु को देखकर गदाधर पंडित बड़े प्रेम से गले लगाते हैं और ये दोनों जो है वो भाव में मग्न हो जाते हैं, बहुत देर तक एक दूसरे को आलिंगन देते हैं। उसके बाद में गदाधर पंडित है नित्यानंद प्रभु को कहते हैं कि आप कृपा करके यहां पर प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो नित्यानंद प्रभु बंगाल से एक उच्च प्रति का सूक्ष्म चावल ले आते हैं, तो सूक्ष्म प्रति का चावल एक लाल रंग का रेशमी वस्त्र लाते हैं। तो गदाधर पंडित वो रेशमी वस्त्र है वो गोपीनाथ जी को चढ़ाते हैं और वो जो चावल है वो लेकर पकाने के लिए प्रारंभ करते हैं। तो उस मंदिर के आसपास जो भी साग सब्जी होती है उस साग सब्जी को तोड़कर वो चैतन्य महाप्रभु को जो प्रिय शाक है वो शाक का सब्जी बनाते हैं, चावल बनाते हैं। उसके बाद सुकोमल इमली के जो पत्ते होते हैं उस पत्ते को तोड़कर समुद्र का जल मिलाकर एक प्रकार का अम्ल ऐसे एक व्यंजन बनाते हैं। तो ये तीनों व्यंजन बनाने के बाद स्वयं गोपीनाथ जी ही है वो स्वयं जो है गदाधर पंडित है गोपीनाथ जी को ये भोग अर्पण करते हैं। तो उसी क्षण पे बिना बुलाए गौरंग महाप्रभु वहां पर उपस्थित होते हैं और गौरंग महाप्रभु कहते हैं कि भले आपने मुझे निमंत्रण नहीं दिया है फिर भी मैं बलपूर्वक ये प्रसाद का ग्रहण करूंगा कि नित्यानंद प्रभु ने द्रव्य दिया है, आपने उसका रंधन किया है, रसोई बनाई है और ये गोपीनाथ का प्रसाद है, उसके ऊपर मेरा तो जरूर हक होना चाहिए। तो फिर सबको गदाधर पंडित प्रेम पूर्वक प्रसाद अर्पण करते हैं और उसके बाद जो अवशेष बचता है भक्तगण जो है उसको लूट कर खा लेते हैं। तो यहां पर ये एक विशेषता हम देखते हैं कि हमें भी देखना चाहिए कि हर एक साधक को भगवत कथा सुनने के लिए हमेशा उत्साहित रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम ध्यान पूर्वक भगवत कथा सुनते हैं और कभी कभी हमारा ध्यान नहीं होता है, मगर एक है कि भगवत कथा की यही विशेषता होती है कि वो हमेशा असर उसका होगा ही, उसका परिणाम होगा ही। अगर हम ध्यान पूर्वक सुनते हैं तो उसका असर तुरंत होता है, अगर ध्यान पूर्वक नहीं सुनेंगे तो थोड़ा समय लगेगा, इतना ही बात। जैसे धृतराष्ट्र है वो भी भगवत गीता सुनता है, मगर सुनते समय उसका ध्यान ठीक तरह से नहीं रहता। उसका ध्यान किस पर रहता है कि अभी युद्ध में क्या हुआ, मेरे बेटे जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। तो ये उद्देश्य भगवत गीता का श्रवण करता है, मगर इसका असर ऐसा नहीं हो कि गीता का उसके ऊपर असर नहीं हो। तो समय थोड़ा ज्यादा लगा, उसके बाद जब विदुर आते हैं और विदुर उनको फिर से उपदेश करते हैं, तो जो उन्होंने भगवत गीता सुनी थी उस के जो तात्पर्य है वो तात्पर्य वो समझ गए। तो ये महत्वपूर्ण है कि भगवत कथा जो है उसका वर्णन किया जाता है कि वो इतना मीठा है, अगर प्रेम पूर्वक हम उनको श्रवण करते हैं तो उसका आस्वादन आसानी से कर सकते हैं। जैसे बताया जाता है कि हमारे कुछ शरीर के अंदर कुछ रोग पैदा होता है तो दवाई दी जाती है, विशेषकर अगर आयुर्वेदिक दवाई देंगे तो काढ़ा जो होता है बहुत कड़वा होता है। तो हमारा शरीर की व्याधि दूर करने के लिए जो औषध है बहुत कड़वा होता है, मगर आपको भवरोग से दूर होना है उसके लिए जो दवाई है वो तो सुमधुर है। हमारे आचार्य ने वर्णन किया है कि भगवान का नाम है वो तो न जाने कितने अलग अलग प्रकार के अमृत से भरा हुआ है, और वो इतने उसमें मिठास है कि एक बार अगर प्रेम पूर्वक हम उसको लेना चाहेंगे तो हमें उसका आनंद प्राप्त हो सकता है। उसके बाद में आप हम लोग भी जो स्थान पर बैठते हैं जिसको चटक पर्वत कहा जाता है, जिसे महाराज ने पहले ही लेक्चर पहले दिन के लेक्चर में इस स्थान का विस्तृत रूप से वर्णन किया था कि जब भी चैतन्य महाप्रभु इस स्थान पर आते थे तो कुछ वन के जैसे दिखकर उनको वृंदावन की याद आती थी। फिर गोपीनाथ के सामने जो बड़ा वटवृक्ष है उस वृक्ष को देखकर उनको वंशीवट वृंदावन की याद आती थी। इस रेत के टीले को देखकर उनको गोवर्धन की याद आती थी और नील समुद्र देखकर उनको जमुना नदी के याद आते थे। तो इस स्थान पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने निवास किया था और 1936 जो उनका अंतर्धान का वर्ष है, तो यहां पर ऑलमोस्ट 48 डेज है यहां पर उन्होंने निवास किया। और निज निकट निवास देही गोवर्धन, ये जो गीत है रोज उस गीत का गायन करते हुए उसका स्मरण करते हुए उन्होंने यहां पर निवास किया। मगर यहां पर उनकी प्रकृति इतनी ठीक न रहने के कारण फिर यहां से फिर वो कलकत्ता गए और कलकत्ता में उनका जो बाग बाजार का मंदिर है उस वहां से वो भगवत लीला में प्रविष्ट हो गए। तो यही स्थान है कि इसमें जब शिला प्रभुपाद जी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को जो पत्र लिखा था कि मुझे क्या करना चाहिए, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यहां पर थे और यहां से उन्होंने श्री प्रभुपाद को वो उत्तर दिया था, आदेश दिया था कि आप अंग्रेजी भाषा में ये कृष्ण भावना है चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश है उसको विश्व में प्रसारित किया जाए। तो ये इस स्थान की विशेषता है। यहां से हम लोग जो है हरिदास ठाकुर की समाधि की ओर जाएंगे। अभी हरिदास ठाकुर की लीला तो हम सब लोग जानते हैं, मगर एक विशेष चीज हमको ध्यान में रखना है कि जब भी हमने जगन्नाथ जी का मंदिर का दर्शन किया, आपके ग्रुप का हो गया दर्शन नहीं हुआ, तो कुछ समय के बाद जब आप जाएंगे तो जगन्नाथ जी का प्राकट्य का वर्णन है और उसमें विशेष है कि स्वयं ब्रह्मा जी अपने हाथों से जगन्नाथ जी के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। और उसके बाद में हरिदास ठाकुर को नहीं तो वो साक्षात ब्रह्मा जी है। तो कृष्ण लीला में द्वापर युग में ऐसा होता है कि जब भी ब्रह्मा जी भ्रमित होते हैं और गोप बालकों को वो भगवान से अलग करते हैं, तो उस समय जब उनको पश्चाताप होता है तो ब्रह्मा जी को समझता है कि मेरे हाथ से कितनी बड़ी गलती हो गई। वो देखते हैं कि इंद्र ने भले भगवान के प्रति अपराध किया, पर इंद्र के अपराध से क्या हो गया, तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाने की लीला की, पर उस लीला में क्या हो गया कि सारे ब्रजवासी इकट्ठा हो गए। कि ब्रजवासी का एक दुख था कि जब भी भगवान गैया चराने के लिए वन में जाते थे तभी गोप बालक उनके साथ हुआ करते थे, तो गोपियों को दुख होता था कि अभी हम भगवान को देख नहीं सकते, और जब भी भगवान वापस आ जाते थे गोपियों के साथ रहते थे तभी गोप बालकों को विरह होता था कि भी हमें भगवान का संग नहीं प्राप्त हो रहा है। हालांकि हर एक को 10 या 12 घंटे का संग प्राप्त होता था, तो दोनों चाहते थे कि 24 घंटा जो है हम भगवान के साथ रहे। तो भले इंद्र का अपराध हुआ मगर एक दृश्य से ब्रजवासी आनंदित हो गए, पर ब्रह्मा जी के अपराध से क्या हुआ कि ब्रजवासी कृष्ण से अलग हो गए। तो इसलिए ब्रह्मा जी को समझ गया कि मेरा अपराध है वो बहुत भयंकर अपराध है, घोर अपराध है, उसको मुझे प्रायश्चित प्राप्त होना है। तो वो चाहते हैं कि मेरे को ये जो हमेशा अहंकार होता है कि मैंने इस सारा सृष्टि की निर्मित की है, मेरा इतना बड़ा पद है, तो आज जो है कि हमें हरि कथा में मन क्यों नहीं लगता, हम भगवान का नाम है ठीक तरह से क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि जो चैतन्य महाप्रभु का आदेश है तृणागति सुनिश्चय न, उस आदेश का हम ठीक तरह से पालन नहीं कर सकते। हालांकि हम जानते हैं कि हम भगवान के भक्त है, मगर भगवान के भक्तों में से उत्तम उदाहरण किसका है, तो गोपियों का है। वो क्या करते हैं कि अपने खुद के अस्तित्व को रखते ही नहीं। गोपियों का अस्तित्व क्या है कि केवल भगवान के आनंद के लिए उनका अस्तित्व है। और हमारी गलती क्या होता है कि हम भगवान के सेवा में हमको लगा देते हैं, फिर भी हमको क्या लगता है कि हमारा अस्तित्व थोड़ा अलग है। तो उसमें सेवा करते समय हमको क्या लगता है कि हमें कुछ सुविधा प्राप्त होनी चाहिए, या हमें जो है सबसे पहले दर्शन मिलना चाहिए, या सबसे पहले ऐसे स्पॉट मिलना चाहिए कि जहाँ कुर्सी भी हो, पकड़ाई भी ठीक तरह से सुनने मिले, ठीक तरह से हवामान हो। मतलब क्या होता है कि हमेशा स्वहित की भावना मन में रहती, हालांकि भक्ति भी होती है मगर सब कुछ जो वातावरण है वो अनुकूल होना चाहिए, और सब में जो है हमको लगता है कि हमने कुछ जो किया है तो सारे भक्त लोग जान सके। तो इसलिए हम ये दिव्य चीज प्राप्त होने के बाद उसका अनुभव नहीं कर सकते, और लगता है कि ये जो भावना इतनी दृढ़ होती है, जैसे एक बार बोलते कॉक क्या बोलते हैं, मुर्गा जो होता है, तो उसको क्या लगता था कि मैं आवाज देता हूं उसके बाद सूरज उगता, तो मैं सूरज उगाने का कारण है। तो एक दिन क्या होता है कि एक गांव में रहा करता है और उसको हमेशा ये भावना रखती है कि मेरे आवाज देने के बाद सूरज उगता है, मगर उस गांव के बच्चे लोग जो है उस मुर्गे को बहुत तंग करते हैं, पत्थर मारते हैं, तो बहुत गुस्सा होता है। वो बोलता है कि मेरी कीमत ये लोग नहीं जानते, मैं दूसरे गांव चला जाता हूँ। तो फिर दूसरे गांव चला जाता है, दूसरे गांव चला जाता है, सुबह होती है, आवाज देता है, सूरज उगता है, तो ये मन में इतना खुश होता है कि जो गांव में मैं था उस गांव के लोग अभी बहुत पछताते होंगे क्योंकि मैं आवाज दिया नहीं, वहां सूरज उगा नहीं, तो फिर वहां वो अभी भी अंधकार में बैठे होंगे, मेरे को ढूंढते होंगे कि कहाँ गया मुर्गा, उसके कारण सूरज नहीं उगा है। तो ये एक जीव की ये लगता है कि मैं भी जो भी कर रहा हूं तो मेरे कारण कर रहा हूं और मेरी शक्ति है, और इस कारण ये मैं जीवन में जो यश आ रहे हैं उसका कारण मैं हूं। इतना ही नहीं तो जीव की ये भी अभिलाषा लगता है कि मैं जो कर रहा हूं सब लोग जाने। इसलिए एक जानता है कि एक दोस्त होता है, दूसरे दोस्त के घर पे जाता है, उसको लग उसको बोलते हैं चलो हम दोनों मिलके जाते हैं बाहर। तो बोलता क्या है, मैंने मेरे सारे कपड़े धो दिए, मेरे पास कपड़े नहीं है। तो ये दोस्त बोलता है ठीक है मेरा शर्ट देता हूँ, हम दोनों चलते हैं। फिर दोनों बाहर निकलते हैं, एक घर में जाते हैं। घर में जाने के बाद ये बोलता है ये मेरा दोस्त है, उसका ये इतना डिग्री है, ये कार्य किया है, उसने जो शर्ट पहना है वो मेरा ही है। तो ये दोस्त बहुत बड़ा गुस्सा होता है, बोलते ये क्या परिचय करने का तरीका हो गया। तो ठीक है दूसरे घर में जाते, तो उसमें बोलता है ये व्यक्ति का नाम ये है, इसने ये किया है, ये जो शर्ट है ना मेरा नहीं है। तो फिर ये फिर से ये गुस्सा होता है, ये क्या है, तू शर्ट के बारे में बोलता क्यों। तो ठीक है मैं कुछ बोलूंगा नहीं। तो तीसरे घर में जाता है, तीसरे घर में जाता है, फिर से वो बता देता है मेरा दोस्त है, इतना पढ़ा किया है, इसने ये किया है, मैं उसके शर्ट के बारे में अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। क्योंकि जो कार्य हम करते हैं हम चाहते कि सारे लोग उसको सुन ले। तो ब्रह्मा जी भी ये जानते थे कि ये जो अहंकार है इस अहंकार को नष्ट होना चाहिए। तभी हम देखते कि यही जो ब्रह्मा जी की जिन्होंने जगन्नाथ जी के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की, और जब वो हरिदास ठाकुर के रूप में आते हैं तो उनके लिए मंदिर में प्रवेश वर्जित, हालांकि वो पास में भी नहीं जा सकते। तभी उनके मन में यह भावना नहीं आती है कि अरे मैंने इस मंदिर में विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की है तो मैं जाके देखता हूँ कि आज के पुजारी क्या कर रहे, ठीक तरह से विग्रह की पूजा कर रहे हैं नहीं कर रहे। बस उन्होंने देखा कि भगवत इच्छा है कि भगवान ने मुझे ये भूमिका प्रदान की है, क्योंकि ये पश्चाताप से जब वो नवदीप जाकर चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना करते हैं तो उस समय चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जब मैं कलयुग में अवतार लूंगा, अवतरित होऊंगा, उस समय हरि नाम का प्रचार करूंगा और आप नामाचार्य बनेंगे और आप यवनपुर में जन्म लेंगे। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, उसका स्वीकार करते हैं और किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं रखते कि जिन्होंने जिस मंदिर के विग्रह की प्रतिष्ठा की है अभी उस मंदिर के अंदर वो कदम नहीं रख सकते, न तो बल्कि उसके पास में जा सकते हैं। इतना ही नहीं तो उनके जो सेवक है उनके सेवकों के ऊपर भी मेरी छाया नहीं पड़ना चाहिए, ये भाव में वो आते हैं। तो कोई भी अधिकार नहीं, कोई भी इंटरटेनमेंट नहीं है, तभी उस भावना से हम निरंतर हरिनाम ले सकते हैं। उसके विपरीत एक उदाहरण होता है कि रामचंद्रपुरी जो है उनकी कथा आप जानते हैं कि जैसे चैतन्य महाप्रभु के ऊपर वो टीका करते थे, मगर वो जब भी पूरी में रहते थे तो किसी के घर में प्रवेश करते थे और कहते थे कि मैं माधवेंद्रपुरी जी का शिष्य हूँ और आपका ये सौभाग्य है कि मैं आपके घर में आया हूँ और आप जो है मेरे लिए प्रसाद की व्यवस्था कीजिए। मतलब क्या होता है कि आप कभी भी आपका पोजिशन है, स्थान है, उससे कुछ अधिकार नहीं ले सकते। जिस प्रकार के आपका व्यवहार है उस प्रकार से लोग आपका आदर करेंगे, उसी प्रकार से भगवान जो है आपकी सेवा स्वीकार करेंगे। तो ये हरिदास ठाकुर के स्थान पर इस हमारा ये चिंतन होना चाहिए कि किस प्रकार से उन्होंने अपना सारा पद, अपना सारा ऐश्वर्य, जिनके पास इतने सारी योग्यता है, इतना अधिकार है, वो भी ऐसे स्थान लेते हैं कि पूरी तरह से निष्किंचन किसी भी प्रकार का अधिकार वो स्वीकार नहीं करते। और तब चल के हम देखते हैं कि ये हरिनाम का जो प्रचार है वो हो सकता है। और उसमें एक महत्व की लीला होती है कि बहुत सारी लीलाएं उस स्थान पर हुई है, मगर एक जो समाधि स्थान है, तो एक दिन हरिदास ठाकुर जो है नाम संख्या करते रहते हैं और चैतन्य महाप्रभु उनको मिलने आते हैं। तो हरिदास ठाकुर का मन बहुत व्यतीत होता है और चैतन्य महाप्रभु देख सकते हैं कि हरिदास ठाकुर बड़े चिंता में या दुख में है। तो वो पूछते हैं क्या कारण है, तो वो कहते हैं कि मैं नाम संख्या ठीक तरह से पूरा नहीं कर सक रहा। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आपको आपने सारा जीवन जो है हरिनाम दिया है, आप नाम संख्या जो है थोड़ा कम कर सकते हैं। बरहदास ठाकुर अपने मन के अंदर की प्रमुख व्यथा है वो बताते हैं। वो कहते हैं कि आप थोड़े समय के बाद आप इस भूलोक से अप्रकट हो जाएंगे और आपकी ही जो अंतिम लीला है वो मेरे आंखों से मैं नहीं देखना चाहता। अभी मैं आपको देखते हुए ही देह त्याग करना चाहता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप तो मेरे बहुत अंतरंग भक्त है, मैं आपका विरह सहन नहीं कर सकता हूँ, मगर अगर आपकी इच्छा है तो भगवान उस इच्छा को पूरी करेंगे। फिर दूसरे दिन है चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों गणों को वहां इकट्ठा करते हैं, सारे प्रमुख भक्तगण वहां पर आ जाते हैं और प्रचंड जो है हरिनाम का ध्वनि होता है। तो उस समय हरिदास ठाकुर है वो चैतन्य महाप्रभु के दो चरण है वो अपने हृदय पे लगाते हैं और अपने आंखों से चैतन्य महाप्रभु का मुख कमल का निरीक्षण करते रहते हैं और मुख में हरिनाम लेते लेते अपना देह को त्याग देते हैं। तो जैसे हरिदास ठाकुर देह त्याग करते हैं भक्तगण बहुत दुखी होते हैं, बड़े जोर से हरिनाम संकीर्तन करना आरंभ करते हैं और चैतन्य महाप्रभु भी बहुत दुखी होते हैं, हरिनाम करते हैं। सबको ये याद आता है कि किस प्रकार से भीष्म देव जो है वो अपनी इच्छा से उन्होंने देह त्याग किया था, उसी प्रकार से हरिदास ठाकुर भी स्वेच्छा से देह त्याग कर रहे हैं। बाद में हरिदास ठाकुर को जो है एक वाहन में बैठाया जाता है, उस वाहन को हरिनाम करते हुए समुद्र में लाया जाता है और हरिदास ठाकुर को वहां स्नान किया जाता है। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु घोषित करते हैं कि आज से ये स्थान बहुत पवित्र हो गया है, ये महातीर्थ स्थान है और जो व्यक्ति इस स्थान पर स्नान कर लेगा जरूर उसको भगवत भक्ति प्राप्त होगी। तो उसके बाद में फिर हरिदास ठाकुर के समाधि की जगह पर वहां उनको लिया जाता है, एक गड्ढा बनाया जाता है, हरिदास ठाकुर का जो शरीर है उसमें रखा जाता है। जगन्नाथ जी के मंदिर से चंदन लाया जाता है और सारा चंदन उनके शरीर पे रखा जाता है। जगन्नाथ जी का प्रसाद वस्त्र महाप्रसाद और बाकी जो चिन्ह ले जाते हैं अनेक वस्तु वहाँ रखते हैं। फिर बालू से वो गड्ढे को ढकाया जाता है, वहाँ पर एक चबूतरा करते हैं और उसके बाद में सारे भक्तगण जाकर फिर से समुद्र में स्नान करते हैं और चैतन्य महाप्रभु स्वयं सिंहद्वार पर जाकर भिक्षा मांगने लगते हैं। फिर सरुदामोदर उनको वापस भेजकर फिर सारे सरुदामोदर भय सारे भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था उस स्थान पर करते हैं। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हरिदास ठाकुर हमें नाम की किस प्रकार से नाम साधना करना चाहिए उसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले है एक अपनी भावना पूरी तरह से अहंकार विरहित होना चाहिए। अगर हम प्रेम से भगवत भक्ति करते हैं तो नाम में रुचि आना बहुत संभव है। तो अगर नाम में रुचि लाना है तो किसी किसी नियम का हमको पालन करना पड़ेगा। तो इसलिए हमको कई नियम बताए जाते हैं। तो नियमों का यह उद्देश्य होता है कि जिससे हम मानसिक स्तर से ऊपर चढ़कर भौतिक स्तर पर आते हैं। हम लोग अलग अलग प्रकार के व्रत लेते हैं। तो व्रत लेने का उद्देश्य क्या है कि जब तक 16 माला नहीं होता है तो मैं ये चीज नहीं करूंगा। तो मन का क्या होता है कि एक दिन बहुत अच्छे से भक्ति करेगा, दूसरे दिन बोलेगा कि आज ठीक नहीं लगता है, हम बाद में करेंगे। मगर जब हम व्रत लेते हैं तो हम मन का स्तर छोड़कर बुद्धि के स्तर पर आते हैं। तो बुद्धि के स्तर पर आते हैं तो बुद्धि हमको कहता है कि नहीं, मन शांत हो या अशांत हो, मन लग रहा है नहीं लग रहा है, मेरा व्रत है तो मैं ये साधना पूरी करूंगा और उसके पश्चात ही होगा। तो इसी प्रकार से हमारा मन जो है नियंत्रित हो सकता है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि भगवान जो है, जैसे जगन्नाथ जी का हमने भाव का वर्णन किया है कि बहुत दयालु भगवंत होते कि जैसे ही भक्त जिस भावना से भगवान को प्रार्थना करते हैं उसी भावना में भगवान उसको प्रिंसिपल देते हैं। भगवान के जगन्नाथ जी के बहुत से वो सेवाई थे, उनके भगवान के इस भाव का बहुत बार अनुभव होता है। जैसे कहा जाता है कि गजेंद्र जो है, तो जब वो संकट में पड़ता है, 1000 वर्ष तक युद्ध करता है, उसके बाद जब उसकी सारी शक्ति क्षीण होती है तो उसको समझता है कि अभी मेरा मृत्यु अटल है, कुछ क्षण में मेरी मृत्यु होगी। तो पूर्व जन्म के स्मृति के अनुसार उसको जब वो प्रार्थना याद आती है तो वर्णन है कि जैसे वो गोविंद का नाम लेते हैं तो उसके मुख से गो शब्द बाहर निकलता है, उसे क्षण में भगवान वैकुंठ से चल देते हैं और विंद ये शब्द होते तक गजेंद्र का उद्धार हो जाता है। तो ऐसे ही भगवान की दया होती है और हम इस पूरी के स्थान पर अलग अलग कथाओं से हमारे मन के अंदर ये विश्वास निर्माण कर सकते हैं। अभी सिर्फ एक दो स्थान के बारे में संक्षिप्त में बताना है, उसके बाद जो है आप भक्ति कुटीर में जाएंगे। तो भक्ति कुटीर ये जो स्थान है कि जहाँ भक्ति विनोद ठाकुर जो है 1910 से लेकर 1914 तक उनके अंतर्धान होने तक 4 साल है वो हमेशा हरिनाम करते रहे। और आज जो विश्व में हरिनाम संकीर्तन फैल गया है, तो 4 साल जो भक्ति विनोद ठाकुर ने वहां पर बैठकर जो तपस्या की, उस नाम के प्रभाव से विश्व में जो है हरिनाम संकीर्तन फैल गया है। और ऐसा था कि उनकी ये इच्छा थी, वो ये देखना चाहते थे कि सारे विदेश के लोग जो है वो मायापुर में आकर जय सचिनंदन यानी गौर हरि का नाम का संकीर्तन करेंगे। तो वो 4 साल उस स्थान पर रहे और उन्होंने क्या किया था, अपना एक अंतिम बिल बनाया था। हालांकि इस ओडिशा में सारी जो प्रॉपर्टी ओडिशा सरकार की होती है, पर भक्ति विनोद ठाकुर ने जो भक्ति कुटीर है अपने मृत्यु पत्र में लिखा था कि ये स्थान जो है वो बंगाल की सरकार के कब्जे में रहेगा और जब भी कोई संस्था विश्व में हरिनाम का प्रचार करेगी उसको ये स्थान भविष्य में दिया जाएगा। तो ये जो बिल था वो कई साल तक किसी के ध्यान में नहीं था। फिर 1 साल जो है सरकार ने देखा कि ये जो स्थान है ये ऐसे संस्था को देना चाहिए, तो उन्होंने न्यूज़पेपर में एक छोटा सा ऐड डाला कि ऐसा ऐसा स्थान है, उसका ऑप्शन होगा, जो संस्था चाहती है वो ले सकती है। तो फिर इस्कॉन और गोड़िया मठ जो है उन दोनों ने उस वहां पर गए और फिर वहां के क्षण में जो है अभी वो स्थान है इस्कॉन मंदिर के इसमें है। तो जो ऑक्शन है उसमें 25,000 में वो स्थान जो है इस्कॉन मंदिर को प्राप्त है। तो वहां पर एक विशेष स्थान है कि जहां पर आप देख सकते हैं कि ठाकुर भक्ति विनोद का विग्रह है और आज वहां पर उनकी सेवा पूजा चल रही है। उसके बाद आप महातीर्थ समुद्र में स्नान करेंगे। तो समुद्र स्थान का जो वर्णन तो है, इसको नील सागर कहा जाता है। इसी सागर में जो है भगवान दारु ब्रह्म के रूप में तैरते तैरते वहां पर आए थे और चैतन्य महाप्रभु का दिनचर्या का यह नित्य ये था, नियम था कि रोज सुबह वो जाकर सागर में स्नान करेंगे, उसके बाद जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे और फिर जगन्नाथ जी का प्रसाद लाकर हरिदास ठाकुर को अर्पित कर सके। और जो भी भक्तगण बंगाल से आते थे उनको चैतन्य महाप्रभु ने यही आदेश दिया था कि सबसे पहले जाकर आप सागर में स्नान कीजिए, सागर में स्नान करने के बाद जगन्नाथ जी के चक्र का दर्शन करो, फिर उसके बाद यहाँ पर आकर आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। टाइम 5 मिनट्स। सो इस ये जो सागर है, तो इस सागर का ये एक महत्व है कि चैतन्य महाप्रभु हमेशा इस सागर के तट पर रहे, वहां पर उन्होंने संकीर्तन किया, न तो चैतन्य महाप्रभु रहे, उनके बहुत सारे पार्षदगण भी वहां पर रहे हमेशा जो है उस स्थान पर उन्होंने स्नान किया है। लक्ष्मी जो है वो साक्षात सागर से उत्पन्न होते हैं, वरुण देव जो है उनके पिता है, और एक सागर जो है महातीर्थ है, इसलिए देखते हैं कि गंगा नदी जो है वो हमेशा तीव्र वेग से सागर की ओर बढ़ती रहती है, क्योंकि वो सागर की महिमा जानते हैं कि साक्षात भगवान जो है वो उस स्थान पर रह रहे, उस स्थान पर लीला कर रहे हैं, तो मेरा जल भी उसमें भगवान के स्थान में शामिल हो सकता है। तो इस सागर के निर्मिति की ऐसी कथा कही जाती है कि मिर्जा करके जो एक गोपी है वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण की सेवा करती है। एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण वहां पर उनके पास आते हैं तो उनके सात पुत्र होते हैं, तो सात पुत्र में से एक छोटा बच्चा जो है उसको उनके बड़े भाई जो है थोड़ा तकलीफ देते हैं, तो रोते रोते अपने माता के पास आता है कि मेरे भाई जो है मुझे पीड़ा दे रहे हैं। तो उस समय कृष्ण देखते हैं कि अभी विरजा जो है उसको अपने पुत्र को ध्यान देना होगा, इसलिए वो वहां से निकल जाते हैं। तो विरजा को बहुत दुख होता है कि इनके कारण जो है भगवान श्री कृष्ण जो है मेरे घर से निकल गए, तो क्रोध से अपने पुत्र को शांत देती है कि आप जो है भूतल में जाएंगे और अलग अलग खंडों में रहेंगे, एक साथ नहीं रह सकते, अलग अलग जगह पे रहेंगे। तो सबसे छोटा जो है वो लवण सागर में ही उसका पानी जो है खारा होता है, उससे बड़ा जो होता है वो गन्ने का जूस होता है, उससे डबल बड़ा जो होता है वो मध्य का होता है, उससे और बड़ा जो होता है वो घी का होता है, उससे बड़ा जो होगा वो दही का होता है, फिर दूध का होता है, और उससे बड़ा जो है वो मीठे पानी का जल होता है। तो उससे जो पुत्र है उनको भी बड़ा दुख हो गया, और भगवान को भी समझा कि ये गोपी ने जो है अपने पुत्रों को क्रोध में आकर इस प्रकार का श्राप दिया है। तो फिर उनके पास आते और कहते हैं कि हर दिन मैं आपके घर में आकर आपकी सेवा को स्वीकार करूंगा, और उनके पुत्र को विशेष करके लवण सागर है जो सबसे छोटा था जो इस श्राप का कारण हुआ था, उसको कहते हैं कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मैं आपके तट पर आकर स्वयं निवास करूंगा और रोज आपके जल में स्नान करूंगा कि जिससे आपको मेरा विरह ना हो सके। तो इस प्रकार से आप हम सभी का यह सौभाग्य है कि भक्तों के संगत में हम लोग ऐसे विभिन्न स्थानों पर जाकर ये कथाओं का चिंतन करेंगे, और विशेष करके जब आप समुद्र स्नान करेंगे बड़े ध्यान पूर्वक करना, ये जो समुद्र है वो थोड़ा एक कुप्रसिद्ध है कि आप थोड़े लिमिट के अंदर अगर आप जाते हैं तो बाहर आना बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि आज तक अनेक यात्रा आ गई है और हर यात्रा में एक दो प्रसंग ऐसे आए कि जो व्यक्ति है वो ऑलमोस्ट जो है मृत्यु के इससे बाहर आया है। तो इसलिए जब भी हम इस स्थान पर जाते हैं तो श्रद्धापूर्वक स्नान करना चाहिए, और जहां तक हमको जाने की अनुमति है उस तक जाकर हम प्रेम से वापस आना अच्छा रहेगा। तो ये सभी को नम्र विनंती है कि ये स्नान करते समय विशेष रूप से ध्यान दे, ज्यादा अंदर न जाए। कई बार मैं देखा है कि हमारे कई भक्तगण अंदर गए और समुद्र की लहरें ऐसे आई कि वो बाहर आ ही नहीं सके, फिर जहां से वो गए एक किलोमीटर दूर से एक 15-20 मिनट के बाद जब ही थोड़ा जो लहरें है उसका दिशा बदल गया, हवा जोर से आया, तो फिर वो बाहर आ सके। तो इसलिए बड़े जवाबदारी से और बड़े ध्यान पूर्वक उसमें स्नान किया।
Thank you.
रामायण की कथा सुन रहा है वहां पे, तो उनको हमने बोला है कि कुछ देर बाद आप अपनी कथा खत्म कीजिएगा, इसलिए हम वहाँ कीर्तन नहीं कर सकते। टोटा गोपीनाथ के गार्डन में वो लोग कथा कर रहे हैं, तो हम लोग जाएंगे दर्शन जल्दी से जल्दी लेंगे। क्यों? क्योंकि उनका भोगा ऑफरिंग का समय है, कुछ ही देर में